ये आकाशवाणी है। अब आप कनक लता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में मुंबई और पालघर के दौरे पर हैं। श्री मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में वैश्विक फिनटेक महोत्सव 2024 को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत का यूपीआई फिनटेक एक बड़ा उदाहरण बन गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी से देश में पारदर्शिता आती है।
भारत में फिनटेक की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत व्यापक है। इससे गांव और शहर की खाई को ब्रिज करने में मदद मिली। कभी हमारे यहाँ बैंक की सर्विस लेने में ही एक पूरा दिन लग जाता था। एक किसान के लिए, एक मछुआरे के लिए, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। फिनटेक ने इस समस्या को दूर किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का फिनटेक दुनिया भर के लोगों का जीवन सुगम बनाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय सेवाओं के लोकतंत्रीकरण में फिनटेक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री ने मुंबई में जीएफएफ प्रदर्शनी का भी दौरा किया जिसमें फिनटेक के नवाचार दर्शाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज पालघर के सिडको मैदान में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और वाढ़वण बंदरगाह का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना पर लगभग 76,000 करोड़ रूपये की लागत आएगी। ये परियोजना भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाएगी और इसमें वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ये बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले बंदरगाहों में से एक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑनलाइन माध्यम से केरल के अल्लापुझा में अर्थुंकल बंदरगाह के निर्माण के तीसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। अर्थुंकल क्षेत्र के मछुआरों की लगातार मांग पर वर्ष 1991 में अर्थुंकल फिश लैंडिंग सेंटर शुरू किया गया था। तीसरे चरण के कार्यों के लिए 150 करोड़ रूपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। इसमें विभिन्न हितधारकों के विचार और सुझाव सुने जा रहे हैं। लोकसभा सचिवालय के अनुसार मुंबई के ऑल इंडिया सुन्नी जमायतुल उलेमा और नई दिल्ली के इंडियन मुस्लिम लीग फॉर सिविल राइट्स जैसे संगठन आज समिति के समक्ष अपने विचार रख रहे हैं। इस समिति का गठन लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में किया गया था। समिति ने आम लोगों, स्वयंसेवी संगठनों, विशेषज्ञों और संस्थानों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए थे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्यूरर समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के संयुक्त बैंक खाता खोलने और अपने समुदाय से किसी संबंधी को नामित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग ने कल इस बारे में एक परामर्श जारी किया। क्वेयर समुदाय के बारे में यह परामर्श सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारतीय संघ मामले में 17 अक्टूबर 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में जारी किया गया है। परामर्श में कहा गया है कि नामित व्यक्ति खाताधारक की मृत्यु होने पर खाते में बकाया राशि प्राप्त कर सकता है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने का फैसला किया है। दोनों देशों ने दोहराया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए आवश्यक है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय संबंधी कार्यतंत्र की 31वीं बैठक कल बीजिंग में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने मतभेद कम करने और लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान खोजने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर रचनात्मक बातचीत की। झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में चंपई सोरेन के स्थान पर घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के राजभवन में आयोजित सादे समारोह में रामदास सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पेरिस में पैरालंपिक खेलों के दूसरे दिन आज भारतीय खिलाड़ी तीन प्रतिस्पर्धाओं में खाता खोलने का प्रयास करेंगे। निशानेबाजी में टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा और चार अन्य निशानेबाज क्वालिफिकेशन राउंड और संभावित फाइनल राउंड में प्रवेश करेंगे। तीन पैरा एथलेटिक्स स्पर्धाएं भी होंगी जिनमें महिलाओं के डिस्कस थ्रो में ज्योति करम और साक्षी कसाना महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में प्रतिपाल अपना दावा पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।